الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں, اس میں آیت 155 سے ہم شروع کریں گے. فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعانی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ کر بھاگ گئے جنگ کے دن, ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کما رکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور حلیم ہیں. اس آیت میں اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو لے گئے تھے ان کے بارے میں یہ بات ہے, لیکن جس ترتیب سے یہ بات آئی ہے اور جس میں ایک یوم التقی الجمعان کا قرینہ ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ میں ہی جو حادثہ ہوا جس میں اچانک خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے, اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھاگے تھے وہ اس وجہ سے بھاگے تھے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا, اور شیطان کے پھسلانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے تھے. جو اس میں جو ہمارے لیے ایک تو اس جنگ کے پس منظر میں بات ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ لوگ بھاگے تو اس کے پیچھے شیطان کی اکساہٹ تھی, اور شیطان کی اکساہٹ جو ہے وہ کس وجہ سے تھی, یہ ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. شیطان کی اکساہٹ اس وجہ سے تھی کہ جو انہوں نے کیا, یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہوتی ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ ہمارے شیطان کے قابو میں آنے کی وجوہات کیا ہیں, یا اس کے پیچھے حکمت بتا دیتی ہیں, اس کا سبب بتا دیتی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو کچھ نہ کچھ خیالات پہلے کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے ان کے ذہن میں کچھ کھٹک ہوتی ہے یا سوال ہوتا ہے, تو اس طرح کی چیز. تو اگر میں سارا دن پوری سچائی پر قائم رہوں تو شیطان کی اکساہٹ کم ہوگی, اس کے اثرات بھی کم ہوں گے, لیکن میں کہیں کہیں پھسلتا رہتا ہوں تو اب شیطان مجھے پھسلا لے آسانی محسوس کرے گا, میں جلدی اس کی بات میں آ جاؤں گا. یہ اصول یہاں واضح کیا جا رہا ہے, اور اس اصول کو سمجھنا چاہیے کیونکہ انسانی شخصیت کی تربیت کے لیے اس طرح کی چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. کہ اگر میں کہیں بھی ڈھیلا پڑتا ہوں, 10 چیزیں میں نے دن میں کی ہیں اور 2 میں قانون سے ہٹ گیا یا اخلاق سے ہٹ گیا, تو میں شیطان کا ہدف ہوں, وہ آسانی سے مجھے آئندہ بھی میرے پاؤں پھسلا دے گا. اور اگر میں سارا دن 10 کام کیے ہیں تو 10 کاموں میں نے قانون اور اخلاق کی پیروی کی ہے, تو اب شیطان کے لیے میں آسان ہدف نہیں ہوں گا, مشکل ہدف ہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بات واضح کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اس طرح سے کامیاب ہو جائے کہ بس آپ نے وہ وسوسہ ڈالے اور اثر انداز ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ نے کچھ باتیں مانی ہوتی ہیں, اسی وجہ سے پھر آج بھی مان لیتے ہیں. لیکن چونکہ شیطان نے اکسایا ہے, اور میں نے تفسیر پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ اچانک حملے میں ہڑبونگ بچ جاتی ہے, اس میں اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی بھاگ پڑتے ہیں, لیکن نہیں بھاگنا چاہیے تھا, میدان جنگ ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. تو اب وہ بتایا کہ تمہارے پیچھے کچھ چکر تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, جو بھاگے ہیں تو وہ کچھ پہلے بھی کہیں نہ کہیں کمزوری دکھا چکے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے اب بہرحال ان کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ غلطی اس طرح کی نہیں تھی اور کہ جانتے بوجھتے ہوئے کچھ حرکت کی ہو, بس وہ ایک ہڑبونگ میں ایسا ہوا اور کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے بھاگ اٹھے, اور اللہ نے بیان بھی کیا ہے کہ تم کچھ دیکھ سن ہی نہیں رہے تھے, اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ کچھ سن ہی نہیں رہے تھے, کچھ کسی چیز کو دیکھ نہیں رہے تھے. تو وہ ہڑبونگ کا جو واقعہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور حلیم ہیں. غفور کے بارے میں ہم جانتے ہیں, حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار, حوصلے والا, صبر والا, और चीज़ों को फौरन जज्बात में आके ना करने वाला, बल्कि ठहर के ध्यान दे के सूरत हाल को देख कर मामलात करने वाले को हलीम कहते हैं। ये हिल्म से है। हिल्म जो है वो जज्बात का उल्ट होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं कि वो गफूर तो हैं ही, लेकिन वो चीज़ों को भी समझते हैं कि तुमने ये हरकत किस वजह से की है। ऐसे नहीं कि तुमने कुछ शैतनत के लिए या फितने के लिए ऐसा किया है, बल्कि इसलिए कि तुम एक उसमें हमला हुआ तो उसको समझ नहीं सके और उसमें निकला। तो ये वो पूरी बात है जिसको हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से पीछे भी आयत नंबर 152 थी, उसमें भी अल्लाह ताला ने माफ़ किया था और यहाँ पर भी अल्लाह ताला माफ़ कर रहे हैं। तो उहद में जो कुछ हुआ वो सहाबा की एक एक अचानक होने वाली बात की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था, जो सोचा समझा कोई कमज़ोरी नहीं थी, कोई मुनाफ़िकत नहीं थी इस तरह की। इस वजह से अल्लाह ताला ने बगैर तौबा के ही माफ़ कर दिया है, इसमें उनकी तौबा का भी जिक्र नहीं है। क्योंकि ये गलती उस तरह की है, ये गलती टाइप गलती है, गुनाह टाइप चीज़ नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू व कालू लिइख्वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ अव कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ऐ ईमान वालो, उन काफिरों की तरह ना हो जाओ जो अपने भाइयों को कहते हैं जब वो सफ़र पे जाते हैं या जंग के लिए निकलते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते, ना मरते और ना कत्ल होते। ये अब काफिरों की बात अल्लाह ताला ने करार दी है। फरमाया कि ईमान वालों काफिरों की तरह, ऐ ईमान वालों काफिरों की तरह ना हो जाओ जो अपने भाइयों से कहते हैं। वकालू लिखवाने मिजा ज़रबू फिल अर्ज़, जब वो ज़मीन में जाते हैं यानी सफ़र पे जाते हैं, या वो अवकानो वज़न या वो जंग पे जाते हैं, लव कानो इमदना कि अगर ये लोग जंग में ना जाते और सफ़र में ना जाते, हमारे पास होते तो ना मरते ना कत्ल होते। ये हम भी जुमले बोलते हैं इस तरह के बाज़ुकात के, भाई हम ठीक टाइम पे अस्पताल पहुंच जाते तो बच जाता, ये होता वो होता, तो इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। इन इस जुमले का और हमारे जुमलों में थोड़ा फ़र्क है। ये जुमला जो है हम जब बोलते हैं तो हम एक इम्कान की बात कर रहे होते हैं कि अगर हम अस्पताल जाते शायद बच जाता, ठीक है। लेकिन ये बात कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने जो फैसला किया वो गलत किया था, नौज़ बिल्ला, और हमारी बात मान ली जाती तो नतायज कुछ और होते। ये इस पस मंज़र में आया है। लेकिन अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं साथ ही कि ये पस मंज़र तो ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये भी है कि तुम मौत के बारे में और कत्ल होने के बारे में कुछ ऐसी बात राय रखते हो जो खुदा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तो ये बात कहना दुरुस्त बात नहीं होती जब अल्लाह ताला के साथ मामला हो। एक है मामला मेरा और आपका रोज़ाना की ज़िंदगी में, एक हम निकले थे अल्लाह के खातिर, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल के साथ जंग पे निकले थे, ये बहुत मुख्तलिफ मामला है। और ये मामला कि मैं अपने किसी फैसले पर निकला हूँ या किसी के कहने पर निकला हूँ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ ये बात ज़ेर बहस है कि अल्लाह के रसूल निकले थे जंग के लिए और अल्लाह के रसूल ने एक फ़ैसला किया था, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में एक हादसा हुआ है। इसको अब ये कहना कि हमारी बात मान लेते तो ठीक रहता, ये अब हदूस से तजावुज़ है, ये कुफर की बात है। इसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि काफिरों की तरह ये ना हो जाओ कि तुम ये बात कहो। हम जो बातें कहते हैं वो सिर्फ खुदा की जिंदगी के अंदर इम्कान के लिहाज से बात करते हैं कि अल्लाह ताला ही का फैसला होता। ये हम नहीं कह रहे होते कि अस्पताल में चले जाते तो मरीज बच जाता, ये नहीं कह रहे होते कि अल्लाह ताला चाहता ना चाहता ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ वो अल्लाह के रसूल के मुकाबले में बात हो रही है, तो इसलिए यह अपनी संगीनी में ज़्यादा सख्त है। अब आगे अल्लाह ताला ने तीन जवाब दिए हैं इसके। तो पहली बात तो ये तबसरा किया अल्लाह ताला ने जवाब देने से पहले, एक तबसरा है, लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अल्लाह ताला ने उनको जो सोच उनके दिल में डाली या उन्होंने खुद सोचा इस बात को, तो इसलिए कि अल्लाह उनको उनके लिए इस बात को हसरत बना दे उनके दिलों में। हसरत वो पूरी ना होने वाली तमन्ना होती है जिसको हम बार बार पछताते रहते हैं, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश मैं उस वक्त ये कर लेता तो ये काम हो जाता, तो ये हसरत होती है। और ये दुख की सूरत में दिल में चुभती रहती है, तकलीफ देती रहती है, लेकिन बार बार कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ये ना होता, काश मैं ऐसा। तो अब वो कह रहे हैं कि काश हमारी बात मान ली जाती, जंग में ना निकलते, हमारा फैसला मान लेते, हमारी राय मान लेते तो हमारे साथी ना मारे जाते। ये मुसलसल वो एक हसरत उनके दिल में, इसी वजह से वो रातों को जागते रहे हैं। पीछे हम जिक्र पढ़ चुके कि अल्लाह ताला जो अच्छे सहाबा थे वो आराम से सो गए, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी, वो आराम से सो गए, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो दौरे जाहिलियत के गुमान करता रहा। तो ये उन गुमानों में से एक गुमान है कि अगर हमारी बात मान ली होती तो बच जाते, इनको ये मसला ना होता। तो पहली बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि मैंने ये इसलिए किया ताकि उनके दिलों में ये चीज़ हसरत बन जाए, एक दुख बनकर रह जाए। ये खुदा की सजाओं में से एक सजा है। जो आदमी खुदा के फैसलों पे राजी नहीं होता वो हसरतों का शिकार हो जाता है। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। इंसान इस दुनिया में खुदा की दुनिया में रहता है लेकिन वो ये समझता है कि दुनिया मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो जितनी चीज़ें आप खुदा ने कर दी हैं उसको तस्लीम करना पड़ेगा, मजबूरी है, ख्वाह वो आपकी गलती के नतीजे में हुई हो। यानी मैंने एक काम ख़राब किया उसके नतीजे में एक नुकसान हो गया, तो बस तस्लीम कीजिए उसको। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो वो हसरत बन के रह जाएगी, वो हसरत बन के रह जाएगी, दिल में कचोके लगाती रहेगी, तकलीफ़ देती रहेगी, नींदें हराम करती रहेगी, खुदा के बारे में राय ख़राब करती रहेगी, लोगों के बारे में राय ख़राब करती रहेगी। तो जो आपके साथ हो जाए, कोई आदमी कर दे, कोई औरत कर दे, कोई दोस्त कर दे, कोई हमसाया कर दे, कोई खुदा की तरफ से चीज़ आ जाए, बस उसको कबूल करना पड़ेगा। यही इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये होता है कि आप खुदा के फैसलों को तस्लीम कर लें, खुदा के अहकाम को तस्लीम कर दें, अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, खुदा की मर्ज़ी को अपना लें। यही इस्लाम। तो अगर आपने ये कबूल नहीं किया तो ये हसरतें बन बन के आपको दुख देती रहेंगी चीज़ें। और एक दिन आता है कि आदमी फिर नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, उसको हर आदमी बुरा लगने लग जाता है, हर आदमी दुश्मन महसूस होता है उसको, और वो ये ख्याल करता है कि मैं सही हूँ बाकी सारे गलत हैं, मैं दुरुस्त हूँ बाकी सारे गलत हैं। तो इसको अल्लाह ताला ने बताया कि ये बातें सोचना कि भाई ऐसा हो जाता, काश ऐसा कर लेता, मैं ये ना करता, मैं वो ना करता, ये इसने मेरी बात मान ली होती तो ये ना होता, उसने मेरी बात मान ली होती तो ये ना होता, ये हसरतें हैं। बस अब जो हो गया है उसको कबूल करो कि खुदा का फैसला यही था। तो ये तबसरा भी है और जवाब भी है कि तुम्हें इसको कबूल करना चाहिए। मैंने अपने रसूल के होते हुए ये सब कुछ करने दिया है खालिद बिन वलीद को, यानी 34 साहबा के उतरने के बाद, 35 साहबा के उतरने के बाद, लाजम तो नहीं था ना कि खालिद बिन वलीद के जहन में यह ख्याल आ जाता, लेकिन आ गया, वो आ गए। और मैंने टीला देखा है, कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मेरा लगा इतनी छत जितना ही ऊंचा होगा या दो मंजिला बस। तो लेकिन बहरहाल वहाँ से अगर वो उतर ना भी उतर आते, ख्याल ना आता, बस अल्लाह ताला बचा सकता था, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में ख्याल आ गया, उन्होंने आकर हमला कर दिया। उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ, अब वो ये सोच सोचते रहना कि भाई काश ऐसा हो जाता, मेरी बात मान लेते, हमारे पास होते तो कुछ ना होता। फरमाया कि ये हसरत है, दिलों में तकलीफ पैदा करती रहेगी। दूसरा जवाब ये फरमाया कि वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ताला ही जिंदगी देता है और मारता है। यानी तुम ये समझते हो कि तुम्हारी प्लानिंग से जिंदगी मिल जानी थी हरगिज़ नहीं, या तुम्हारी प्लानिंग से काफरों ने मर जाना था, या मरने और जीने का फैसला खुदा करता है। प्लानिंग गलत हो तब भी उसका फैसला है, प्लानिंग ठीक हो तब भी उसका फैसला। यानी कितने साहबा वापस आए ना उस जंग से जिंदा सलामत, और बाज़ ऐसे से चोट भी नहीं लगी। तो बावजूद इसके गलती के ऐसा तो नहीं है ना कि जिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी थी वही वहां शहीद हुए हैं, ऐसा तो नहीं। तो कितने वापस आए कितने नहीं आए, तो फैसला किसका था? तुम्हारी तदबीर का, खालिद बिन वलीद का, या खुदा का फैसला था? जिसको तो वल्लाहु यहयी व युमीत का मतलब है कि तुम अपनी प्लानिंग से समझते हो कि बच जाओगे, तो कितने बच के आ गए हैं? वो तुम्हारी प्लानिंग के बावजूद, तुम्हारे इख्तलाफ के बावजूद बच के आ गए हैं। तो बचने और मरने का फैसला खुदा के हाथ में। तो बहरहाल ये जो शहादतें हुई हैं ये खुदा के फैसले से हुई। तो वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि कबूल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े काम जो होते हैं, नुकसान जो होते हैं, इसमें खुदा की मोहलत, खुदा की हिकमत, खुदा की तौफीक शामिल होती है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और ये याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो मैं उसको देखता हूँ। ये जुमला बहुत दूसरा पहलू है कि तुमने जो तदबीरें की, तुमने जो साजिशें की, दोनों को जानता हूँ। यानी जो लोग मुनाफिकीन थे वो साजिशें कर रहे थे, और जो मोमिनीन थे वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, कोई इकदाम कर रहे थे, कोई तैयारी कर रहे थे। तो फरमाया हर एक को मैं जानता हूँ, तो तुमने जो तदबीरें करनी थी उसके बावजूद मैंने मरने दिया, कुछ लोगों को शहीद हो गए, और जो तुमने प्लानिंग करके साजिशें की थी उसको ही मैंने रद्द किया, उसका नुकसान नहीं होने दिया। यानी अगर आप देखें तो उहद में सहाबा जीत गए हुए थे बावजूद इसके कि लोग चले गए, छोड़कर चले गए। तो ये अब बताया अल्लाह ताला ने कि देखो इस तरह के होने वाले नुकसान। पीछे जुमला गुजर चुका है कि आयत नंबर 153 में, 153 में ये बात गुजर चुकी है कि मैंने तुम्हें गम पे गम इसलिए होने दिया ताकि तुम जो चीज़ें खो देते हो या तुम्हें जो मुसीबत आती है उस पे दुखी ना हुआ करो। ठीक है, तो अब यहाँ उसी को हसरत बना दिया कि अब तुम्हारे अंदर दुख मौजूद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अल्लाह के रसूल के साथ जो जंग करने निकले थे उसके नतीजे को कबूल नहीं कर रहे हो, उसको हसरत बना के बैठ गए हो। अब आगे तीसरा जवाब दिया। तीसरा जवाब यह है कि वला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाही औ मुत्तुम, तो अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ अल्लाह के रास्ते में, या अल्लाह के रास्ते में कत्ल तो नहीं हो वैसे मर गए, ला मगफिरतु मिन अल्लाह व रहमतुन खैरु मिम्मा यजमाउन, तो जो तुम्हें रहमत और मगफरत मिलेगी वो तमाम उन चीज़ों से बढ़कर है जो तुम जमा करते रहते हो दुनिया में, जो माल जमा करते हो उनसे बढ़कर उसकी उसमें बेहतरी है। अब ये तीसरा जवाब है कि तुम जिनको शहीद होना कह रहे हो वो शहीद हो गए, कोई नुकसान हो गया? नहीं, उनको तो तुम्हारी पूरी दुनिया की जायदादों से बढ़कर चीजें मिलने वाली हैं, तो वो फायदे में है, तुम नुकसान में हो। वो फायदे में चले गए क्योंकि उनको वो शहीद हुए हैं। और इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो 70 सहाबा शहीद हुए हैं वो कोई मुनाफिक नहीं थे, भगौड़े नहीं थे, बल्कि वो उसी हड़बूंग में ऐसा हुआ है कि बस वो हमला हुआ है, पीछे से वो मारते चले गए खालिद बिन वलीद और उनके सिपाही। तो ये इस कैफियत में जितने लोग शहीद हुए हैं फरमाया कि उनको मगफरत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, और जो पास जो चीज़ें तुमने जमा कर रखी हैं, कोई जायदादें, कोई ज़मीनें, कोई ये, उनसे बढ़कर है वो, उनसे कम नहीं। तो नुकसान में तुम हो कि वो है, ये तीसरा जवाब है उनकी बात का कि तुम ये पछता रहे हो कि काश वो हमारे पास होते, ये होता वो होता। तो फरमाया कि जो लोग शहीद हो गए हैं वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हालत में है, उनको तो मगफरत भी मिल गई, रहमत भी मिल गई। ये वो लोग हैं जिनकी जन्नत का ऐलान अगर आप उहद के शहदा को निकालें तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत का ऐलान फरमा रहे हैं कि उनको मगफरत भी हासिल हो गई और उनको रहमत भी हासिल हो गई। तो बड़े एजाज की बात है कि जिनका जन्नत का फैसला उनकी शहादत के साथ ही दुनिया में सुना दिया गया, सहाबा के लिए जो जिंदा थे उनके लिए इसमें कितनी कशिश होगी, क्या कैफियत होंगी, वो वही जानते हैं। लेकिन बहरहाल तो ये अब तीसरा जवाब हो गया। तो जवाब जवाब जो है वो दोबारा देखिए, बहुत अहम है क्योंकि ये जो मकाम है सारा उहद वाला, ये बहुत अच्छी जहन साजी करने वाला है। पूरा पूरा कुरान ही ऐसा है کہ وہ ہماری ذہن سازی کرتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور میں توجہ دلاتا رہتا ہوں ان چیزوں کی طرف جو ذہن سازی کرنے والی ہیں. اور اب جب سے یہ خانقاہ، یہ پروگرام ہماری خانقاہ کا حصہ بنا ہے، تو میں نے اس پہ زیادہ فوکس بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں کہ ہم جب یہ جملے بولتے ہیں کہ کاش ہمارا بھائی ہمارے پاس ہوتا تو نہ مارا جاتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اس کو حسرت نہیں بننا چاہیے، اس طرح کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری پلاننگ کے مرہون نہیں ہوتا. تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم پلاننگ کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، جو دفاعی اقدام کرتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہی فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ خالد بن ولید یہ حملہ کریں گے تو کس کس نے شہید ہونا ہے. سب کو شہید نہیں کیا گیا، کچھ بچ کے آ گئے، کچھ کو چوٹ بھی نہیں لگی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کا فیصلہ سے ہوتا ہے. جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، کیا ان کی غلطی تھی؟ حملہ تو ان پہ ہوا تھا جو اوپر سے نہیں اترے تھے بلکہ کھڑے تھے. تو یہ بات نہیں ہے. بات اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ ان تدبیروں سے یا تمہارے کوتاہیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا جواب یہ دیا ہے، چوتھا بلکہ، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں، یعنی شہید ہو گئے ہیں، ان کو ایک مغفرت اور ایک رحمت خدا کی حاصل ہو چکی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تم اکٹھی کر سکتے ہو ان سے بڑھ کر ہے ان کو جو کچھ مل گیا. ظاہر ہے کہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت، یہ چھوٹی بات تو نہیں کہ اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ ناکام ہوں گے. ہم جو دنیا میں جیتے ہیں ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ پتہ نہیں کل قیامت والے دن کیا نتیجہ نکلنا ہے. ان کا نکل آیا اور وہ کامیابی کی نوید سنا دی گئی. اور یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والے جو ہیں جب ان کی فرشتے جان نکالتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی جب شہادت کے موقع پر جان نکلی ہوگی تو ان کو بھی اپنی اس کامیابی کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ خوش ہوں گے. تو اب یہ جو بات ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو خدا کی راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، دونوں کے لیے بشارت ہے، صرف شہید ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. شہید ہونے کا لفظ جو ہے یہ ہمارا بعد میں ڈیولپ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. اور یہاں قتل تم کا لفظ قتل ہونے یعنی شہید ہونے والوں کے لیے ہے، اور متم کا لفظ ویسے طبعی وفات ہے. تو جو اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہو وہ اگر قتل ہو جائے تب، وہ ویسے فوت ہو جائے تب، دونوں صورتوں میں اس کو خدا کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی. مغفرت اور رحمت کا فرق سمجھ لیجئے. مغفرت کا مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا. تو گناہوں کو معاف کر دینے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی سزا نہیں ملے گی، جو گناہ معاف ہو جائیں گے ان کی سزا نہیں ملے گی. یہ معافی کا مطلب ہوتا ہے. مثلا میں نے جھوٹ بولا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا تمہیں، اب اس جھوٹ پہ مجھے سزا نہیں ملے گی. لیکن سزا نہیں ملے گی یہ بہت اچھی حالت نہیں ہے، ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے. لیکن اگر اس کے بعد انعام کوئی نہ ملے، کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، سزا تو نہیں ملی، تو وہ اس مغفرت کا کیا فائدہ. تو اس لیے فرمایا کہ رحمت بھی ملے گی. یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کے جرائم معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، کوتاہیاں معاف ہو گئیں، خاص طور سے جو ہڑ بھونگ مچی اس کے پہلو سے تو وہ معاف ہو گئی، لیکن ساتھ ہی رحمت بھی حاصل ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ان کو حاصل ہو گئی، وہ خدا کی فضل پا رہے ہیں، خدا کی رحمتیں ان کو موصول ہو رہی ہیں. تو مغفرت اور رحمت دونوں مل کر پوری بات بن جاتی ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، اب اس سے پنشمنٹ نہیں ہوگی، لیکن مزید یہ کہ رحمت بھی ان کو حاصل ہوگی. اور یہ رحمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی ساری جو بھی مال جمع کیا جا سکتا ہے ان سے بڑھ کر. आगे पांचवा जवाब है, वलाइन मुत्तुम और कुतिल तुम ला इलाल्लाही तुहशरून, और अगर तुम मर गए या तुम कत्ल कर दिए गए यानी शहीद कर दिए गए तो यकीनन अल्लाह ही की तरफ जाना है। ये बहुत दिलचस्प जुमला है, इसको आम तौर से लोगों ने आम जो अल्लाह ताला का आखिरत की याद दहानी उस मानी में लिया, ये मतलब नहीं है। मतलब वो तो है ही, यानी उसका इनकार नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ ये अपने अंदर एक पहलू रखता है कि देखो मरने के बाद या कत्ल होने के बाद वो कहाँ गए, अल्लाह की तरफ गए ना, कहीं और तो नहीं चले गए। सबने मर के अल्लाह के पास जाना है, किसी ने आज चले जाना है, किसी ने 10 साल बाद, किसी ने 20 साल बाद, तो वो चले गए अल्लाह के पास, जहाँ जाना था वहाँ चले गए। या तो पछताने की बात तब है कि ओहो शहीद होने के बाद वो नौजबिल्ला शैतान के पास चले गए या किसी खतरनाक जगह पे चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ, तो अल्लाह के पास जाना था तो चले गए। तो इसमें घबराने की या इसमें परेशान होने की बात क्या है, पछतावे की बात क्या है इसमें, वो अपनी सही जगह पे जहाँ जाना था चले गए, और इस खुशकिस्मती के साथ कि उनको मग़फ़रत भी हासिल हो गई, रहमत भी हासिल हो गई। तो ये क्या बात हुई कि तुम इस बात पे रो रहे हो कि वो मर गए, शहीद हो गए। सब ने मर के अल्लाह ही के पास जाना है, ये भी अल्लाह ही के पास गए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। सब दुनिया के लोगों की आखिरी अंजाम यही है कि सब ने खुदा के पास जाना है। तो आखिरत की याद दहानी तो है ही इसमें, लेकिन असल यहाँ जो मजमून ज़ेर बहस है वो ये कि शहीद होने से हुआ क्या है, इसको हसरत बना के क्यों बैठ गए हो, क्या मसला हो गया है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत देता है, तुम्हारी तदबीर नहीं देती, और जो कुछ तुमने तदबीरें की प्लानिंग की उसको सबको अल्लाह ताला जानता है, उसके बाद फैसला करता है वो कि किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है। फिर तुम अल्लाह के रास्ते में जो मारे गए हैं वो तो बेहतर ज़िंदगी में चले गए हैं, और फिर ये फरमाया कि तुम अगर मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो जाओगे कहाँ पर, इसलिए मुत तुमको इकट्ठा किया है, मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो जाना कहाँ पे है, खुदा के पास जाना है, तो वो भी चले गए हैं। तो जो मंजिल अल्लाह ने रखी हुई है वो तुमसे पहले चले गए, बस इतना हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। इससे आप जिंदगी और मौत का जो नक्शा अल्लाह ने बनाया है उसको भी समझ सकते हैं। खुदा के लिए मौत कोई चीज़ नहीं है, वो असल में अगली मंजिल का जो मंजिल मुकर्रर की गई है उसके सफ़र का एक निशान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारे लिए मौत बिलाशुबा एक बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन खुदा के लिए उस प्लानिंग के मुताबिक आपने एक स्टेशन से गाड़ी बैठे और दूसरे स्टेशन पे उतर गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तो मरा ही नहीं आदमी। बता रहे हैं कि मरते ही शहीद होते ही वो मग़फ़रत और रहमत में दाखिल हो गए, तो क्या हुआ, मेरे आपके लिए फौत हो गए हैं, हम रो पीट रहे हैं, और वो मग़फ़रत में दाखिल हो गए हैं, वो रहमत में दाखिल हो गए हैं। तो ये मौत और ज़िंदगी जो है वो हमारे लिहाज से बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन खुदा के पहलू से वो इस दुनिया का बनाया हुआ नक्शा है। इसलिए अगर आप सूरह मुल्क पढ़ें तो अजीब बात से अल्लाह ताला ने स्टार्ट किया है, लोग चूँकि लफ्ज़ों को इग्नोर करके पढ़ते हैं कुरान मजीद को, तो कुरान मजीद ने यहाँ से आगाज़ किया है, तबारक अल्लाज़ी बियादिहिल मुल्क, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है। आगे फरमाते हैं कि वल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया, ये बाबरकत ज़ात है। बाबरकत ज़ात कौन सी है, जिसने मौत को तख्लीक किया। हमारे ख्याल में मौत बरकत की चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बड़ी बाबरकत ज़ात है जिसने मौत और हयात का ये सिलसिला जारी किया है। तो खुदा की नज़र में मौत इस दुनिया की एक बरकत वाली हकीकत है, जिसके बाद हमने उन मंजिलों पे जाना है जिनसे बेहतर कोई मंजिलें नहीं है। तो ये जवाब अल्लाह ताला ने दिए इनको, इसमें अगला जवाब है। अच्छा नहीं, आगे बात दूसरा मजमून शुरू हो रहा है, यहाँ पर सारे जवाब मुकम्मल हो गए हैं कि इस बात काफिरों की तरह ना हो जाना, कि अब पूरी बात समझनी चाहिए कि काफिरों की तरह ना हो जाना कि जो ये कहते हैं अपने भाइयों से जब वो कहीं जाने लगते हैं सफ़र पे या जंग पे चाहते हैं और वहाँ फौत हो जाते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं कि काश ये हमारे पास होते तो ना मरते ना कत्ल होते। जब इनके भाई जाते हैं जंग पे और वहाँ मारे जाते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि काश वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते ना कत्ल होते। तो फरमाया कि मैं ये उनके दिलों में हसरत बनाने के लिए ऐसा किया है। काफिर आदमी खुदा पे भरोसा नहीं करता, खुदा की बात को तस्लीम नहीं करता। काफिर होने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को नहीं मानता, सिर्फ ये मतलब नहीं होता। वो भी आदमी काफिर है जो खुदा को मानने के तकाजे पूरे नहीं करता, वो भी आदमी काफिर है। उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला को हमने अल्लाह ताला के तौर पर कबूल नहीं किया। मसलन एक आदमी की तरफ अल्लाह ने अपना रसूल भेजा कि मेरा ये रसूल आ रहा है, साबित कर दिया कि ये मेरा रसूल है और वो मान नहीं रहा, तो ये भी काफिर है। हालांकि अल्लाह को मान रहा है, उसके रसूल को नहीं मान रहा। इसी तरह अल्लाह को मान रहा है लेकिन अल्लाह ने एक कानून नाजिल किया कि ये तुमने काम करना है, वो नहीं मान रहा। तो अल्लाह की आयतों का इनकार भी अल्लाह ही का इनकार है, तो ये पूरा कुफ्र हो जाता। तो ये लोग जब अल्लाह के काफिर, यहाँ जो काफिर कहा जा रहा है वो इस बात को कि उन्होंने इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अल्लाह के रसूल के साथ हम जंग करने आए थे, तो ये अल्लाह का फैसला है जो कुछ हुआ है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। वो अभी भी रसूल को बातें सुना रहे हैं कि आप हमारी बात मान लेते तो ये कत्ल ना होते, ये शहीद ना होते। इस मानी में यहाँ कुफर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने वाजे किया कि अपने हमारे जो जुमले हैं उनको कुफर जुमले नहीं कहना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि टाइम पर अस्पताल चले जाते तो शायद बच जाता, उसमें हम टाइम पे अस्पताल चले जाते तो शायद बच जाता वाली बात कर रहे होते हैं, जो खुदा के फैसले ही को लेने की बात है, ना कि ये कह रहे होते हैं कि खुदा चाहता ना चाहता तब भी बचा लेता अल्लाह ताला, ये मतलब नहीं होता हमारा। उनकी इस बात को अल्लाह ताला ने चार पहलुओं से जवाब दिया है। एक ये कि ये हसरत बन गई है तुम्हारे दिलों में, तो इसको हसरत नहीं बनना चाहिए। बंदा मोमिन अपने ऊपर होने वाली मुसीबतों को हसरत बनाकर नहीं बैठता, अपने इकदामात को, और ख़ास तौर से वो इकदामात जो उसने अल्लाह की खातिर किए होते हैं। एक होता है कि चलो दुनिया की खातिर किया तो उसमें तो चलो गुंजाइश हो सकती है, उसने अल्लाह की खातिर किए और अब वो हसरत बन के रह गई। और फरमाया कि मौत और ज़िंदगी का मामला तुम्हारी तदबीरों पर नहीं जुड़ा हुआ। ये वाज़ेह है कि कितने ही कामयाब ऑपरेशन भी मरीजों को बचा नहीं सकते, दुनिया में वाजे है। कितने भी अच्छे सेहतमंद खाने खाने वाले भी मरने से बच नहीं पाते। कितने जवान हैं जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कितने बूढ़े हैं जो लंबी लंबी उम्र पा लेते हैं। और इसी जो हमारा कोविड का ज़माना गुजरा है उसमें गालबन बरतानिया की एक खातून थी, मुझे नाम उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 1912-13 का कोई जो वबा थी उसको भी सहा हुआ था और कोविड वाली को भी, दोनों में वो सरवाइव कर गई थी, दोनों में बच गई थी। तो तदबीरों से कुछ नहीं होता। कितने ही अच्छे मुल्क हैं जिनके जिनमें मौत की तादाद ज़्यादा थी अमवात की तादाद, ये खुदा के फैसले हैं। लोगों ने मुझे मैसेज कर करके तंग किया हुआ था, देखो अब तुम्हारा खुदा कहाँ पे है, हमारे साइंसदानों की वैक्सीन काम आ रही है, वो ये काम आ रहा है, वो काम आ रहा है। और मैं कुछ को जवाब दिया, अक्सर को खामोशी इख्तियार की कि देखो खुदा इसके पीछे नज़र नहीं आ रहा कि वो गरीब ममालिक जिनमें खाने पीने को भी नहीं है वहाँ अमवात की शरह कम है। किसके फैसले हैं? क्या मुझे और आपको वैक्सीन ने बचाया था? मेरा ख्याल हमारी पाकिस्तान की अक्सरियत ने वैक्सीन लगवाई भी नहीं थी। तो बस खुदा का फैसला आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन ना लगवाएं, वो ज़रूर लगवाया करें, लेकिन बचाना खुदा नहीं है। उस वैक्सीन के बाद भी कितने लोग फौत हुए हैं। मुझे जो कोविड हुआ तो वो वैक्सीन के बाद हुआ था, यानी कोई 6 महीने साल के बाद, लेकिन हुआ था। तो बस खुदा ने बचा लिया। उसका फैसला होता तो पूरी एहतियातों के बावजूद उठा कर ले जाता वो। तो ये अब खुदा का फैसला, वल्लाहु युहयी व युमीत। हमारी प्लानिंग, हमारी दवाइयाँ ये काम नहीं आती। सब ने जाना है, ये खुदा का फैसला है, वो जा रहे हैं, कोई भी बच नहीं पाया। हज़रत नूह ने 950 साल उम्र पाई वो अगर आज मौजूद होते तो हम शायद कहते हैं कि शायद किसी और को भी नूह अलैहि सलाम जैसी ज़िंदगी मिल जाती, लेकिन वो भी चले गए। फिर ये फरमाया कि जो लोग मर गए हैं उनके ऊपर रो क्यों रहे हो, उसको हसरत क्यों बना के बैठे हुए हो, वो अल्लाह के पास रहमत और मगफरत हासिल कर चुके हैं। फिर ये जवाब दिया कि तुम अगर मर जाओगे या कत्ल हो जाओगे तो जाना कहाँ पे है, अल्लाह ही के पास, तो वो भी चले गए। या तो नहीं कि किसी गलत जगह जा पहुँचे हैं तो तब तो कहो, या रास्ते में फंस गए कहीं तब कहो, वो पहुँच गए तो बस खुदा के सामने जब पहुँचेंगे तो वहाँ फैसला हो जाएगा। आगे थोड़ा मज़मून बदल रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। एक बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लन्फज्जु मिन हौलिक फ़ाफ़ अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। तो ये सिर्फ अल्लाह की रहमत की थी कि जिसकी वजह से आप इनके लिए नरम दिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नरमी वाला है और इसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी है कि मैंने आपकी शख्सियत ऐसी बनाई है कि आप नरम दिल हैं, और ये खुदा की रहमत है इन लोगों के लिए कि आप इनके लिए नरम दिल हैं। मतलब यह है कि आपकी तरफ से सख्ती जाहिर हो जाती, होनी चाहिए थी, ठीक है, कि ये हरकत क्यों की कि उठ के आगे वहां से नीचे उतरा है, लेकिन आप नरम हैं अल्लाह की शफकत से, रहमत से। अगर आप सख्त होते, फज्जन का मतलब होता है सख्त गिर और बुरा सलूक करने वाला, ये दो मानी होते हैं। अगर आप सख्त गिर या बुरा सलूक करने वाले होते, गलीज़ अल कल्ब होते, ये उर्दू वाला गलीज़ नहीं है, अरबी वाला, बहुत सख्त दिल कहते हैं, तो अगर आप बुरा सलूक करने वाले और सख्त गिर होते या दिल आपका सख्त होता तो ये आपके इर्द गिर्द से छट जाते, कोई भी आपके पास ना रहता। तो एक इतनी बड़ी उम्मत बनाने के लिए आपका जो खूबसूरत मिजाज है वो काम आया। तो इस वजह से कि अल्लाह की रहमत थी तो आप इनके ऊपर नरम हैं। अगर आप सख्त गिर होते, सख्त दिल होते तो ये आपके हाथ से भाग जाते। अब ये जाहिर है कि अल्लामा इकबाल ने इसको बयान किया है कि अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी, तो अमीर कारवां में खुए दिल नवाजी होनी चाहिए। लोग उसके पास जाकर तो एक शफकत महसूस करें, एक अपने लिए एक अपनाइत महसूस करें, तोहीन महसूस ना करें, या उनको जलील ना किया जाए, या उनके ऊपर सख्ती ना की जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बहुत बहुत ही बुलंद किरदार के हैं, बहुत ही बुलंद, यहाँ तक कि कुरैश ने आपको ये कहना शुरू किया हुआ उज़्नुन, वो तो कान के कच्चे हैं। आपके बारे में आता है कि आप इतने दिलनवाज शख्सियत रखते थे कि कभी किसी की बात ऐसे करके नहीं सुनते थे, ना फरमाइए, पूरे मुतवज्जो हो जाते थे, ये छोटी बात नहीं है। यानी आप अगर इधर से बात करने लगे हैं तो पूरे मुतवज्जो होकर बात सुनाएं, इधर से करने लगे तो इधर मुतवज्जो हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे करके सुन लें जैसे हम कर लेते हैं। इस शख्सियत को यहाँ अल्लाह ताला ने बयान किया है कि खुदा की रहमत की वजह से आप इनके लिए नरम हैं। साहबा के बीच में तशरीफ़ फरमा होते थे, कोई फ़र्क नहीं करते थे। कई हदीस में बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि कई लोग आए आकर पूछते तुम्हें मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा बताते हैं कि यानी कोई इम्तियाज नहीं, ना कपड़ों का, ना उठने बैठने का। फिर साहबा ने मजबूर किया कि हम आपके लिए एक मेंबर बना लेते हैं ताकि आने वाले को पता चल जाए कि आप कौन। तो जो कुरैश का लिबास था वही पहनते थे, जो उनका उठना बैठना था वैसे ही उठते बैठते थे, कोई ख़ास चीज़ नहीं। हम में से ज़रा कोई आगे बढ़ता है तो वो जनाब अपने लिए स्पेशल मकामात और बैठने उठने के ख़ास आदाब मुकर्रर कर लेता। तो अल्लाह के रसूलों की जो ये जो पहलू होते हैं ना, ये हैरत अंगेज होते हैं, हैरत अंगेज। आपके सामने हजरत आपको कहा गया कि आप खैरुल बशर हैं, तो आपने कहा नहीं वो तो यूसुफ है। अगर मैं यूसुफ़ की जगह होता तो ना पूछता कि औरतों का क्या मामला है। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, पहले औरतों का मामला साफ़ करो, फिर मैं बाहर आऊँगा। आपको कहा गया कि आप खैरुल अनाम है, वो कहने लगे नहीं, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये अपने आप को बड़ा कहने को वो तैयार ही नज़र नहीं आते, हालांकि अजमत का पहाड़ है, किरदार ऐसा शानदार है कि कुरान को ये कहना पड़ा है कि इन्ना कला अला खुलो की नजीर। आप तो अखलाक के बहुत बुलंद मैार पर खड़े हैं, यानी पूरी ज़िंदगी का आदमी ने कोई झूठ ना बोला हो, पूरी ज़िंदगी कोई बददियानती ना की हो, पूरी ज़िंदगी कोई चुगली ना की हो, पूरी ज़िंदगी किसी ने 1 रुपया किसी का ना खाया हो। ये किरदार जिस आदमी का हो उसको ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसवाई का बायस, हमने कभी सच नहीं बोला, आपने कभी झूठ नहीं बोला था, हमने कभी सच नहीं बोला, हर अहम मसले में झूठ बोलते हैं, आपने कभी बददियानती नहीं की 1 रुपए की भी, हम अक्सर करते हैं, हम में से अक्सरियत ऐसी। और मैंने सिर्फ ये नहीं कि आम अवाम, बड़े लीडरों को देखा है, जिंदगी भर बूढ़ा हो चला हूं, और मजहबी लीडरों को जो मसनद इरशाद पे बैठे हुए खुदा का दीन बता रहे होते हैं, उनको भी देखा। यानी कोई ऐसी चीज आप बता दें कि भाई पाकिस्तानियों के अंदर या मुसलमानों के अंदर ये खूबी है, मुझे मायूसी होती है। तो ये सूरत हाल है, हमें अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना है, बहुत ज़रूरत है इस बात की। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिस दिन हमने अखलाक मोहम्मदी अपना ली है, कोई दुनिया की कौम हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उसके बगैर आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी सियासी इंटरनेशनल लेवल के इकदाम कर लें, कोई पार्टियां बना लें, कोई तंजीमें बना लें, कोई समर नहीं होगा, कुछ नहीं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें कौम की अखलाक की तरबियत करनी है, सच्चाई पे कायम करना है, अखलाक पे कायम करना है। तो ये अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो टाइम हो चुका है, तो हम इस बात की आयत को इंशाल्लाह दफा देखते हैं। अभी वो आप जुमला ऐसा है अल्लाह ताला का कि वो मैं रुक नहीं सका कि आपके महासन को बयान करूं, मेरा कजबज बयान अल्फाज में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मुझे हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करते हुए आजजी महसूस होती है कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कि बातें समझा लेता हूँ, आपकी अजमत बयान नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए खुद एक बड़ा जहन चाहिए, वैसी अजमत चाहिए, फिर शायद आदमी कुछ बात बयान कर सके। हमें तो अजमतों को देखा ही नहीं है, तो बयान कैसे करेंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।